हरे कृष्णा। तो चूंकि हरि नाम विश्व हरि नाम क्या है, सप्ताह है, विश्व हरि नाम फेस्टिवल, विश्व हरि नाम उत्सव, यह सप्ताह की जगह इसको करना चाहिए दशाह, दशाह समझते, दस दस दिन का सप्ताह तो गलत है। विश्व हरि नाम महोत्सव या विश्व हरि नाम दशाह, है ना, ये सब होना चाहिए। तो उसमें से आज कितने नंबर का दिन है, 28 से शुरू हुआ था, 28, 29, 30, चौथा है विश्व हरि नाम दशाह का चतुर्थ दिवस, है ना। तो आज के दिन हम हरि नाम की अद्भुत महिमा सुनेंगे। शायद ये कथा आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, और सुनने का बड़ा महात्म्य है। ये हरिवंश से मैं सुना रहा हूं, हरिवंश में बहुत अद्भुत एक कथा है। ये घटना, इसका बड़ा महात्म्य है, इसका मन शुद्ध करने के लिए इसका जो है ये महात्म बताया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। 6 अध्यायों में ये कथा है, बहुत विस्तृत है, 240 श्लोक हैं, तो बहुत मुश्किल है इतना पूरा करना। तो हम कोशिश करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो ये घटना जो है उस समय की है जब भगवान कृष्ण जो है पुत्र प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, कैलाश में जाएंगे तपस्या करने के लिए भगवान कृष्ण, है ना, लीला कर रहे हैं भगवान। तो कैलाश पर्वत में जाएंगे तपस्या करने के लिए, तो भगवान जो है रास्ते में रुके, कहां पर रुके, भगवान यदुनाथ गंगा जी के उत्तर तट पर उस स्थान को देखने के लिए गए जहां उन्होंने पूर्व काल में स्वयं तप किया था। वो कौन सा है, बद्रिक आश्रम, पूर्व काल में स्वयं उन्होंने तप किया था, उन श्री हरि ने स्वयं ही उस साक्षात तपोवन में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करके उस मनोरम स्थान का दर्शन करने लगे, वहां बैठे और अपने मन को समाधि में लगाया, और वहां पर जो है अचानक भगवान ने समाधि लगाई, अचानक क्या हुआ, सब ओर से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट हुआ, खाओ खाओ, मौज उड़ाओ, जाओ जाओ, इन मृगों के पीछे भगवान श्री हरि की कृपा से इन सबको फिर यहां हाक लाओ। बहुत जोर जोर से शब्द हो रहा है, ये भगवान विष्णु हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये हरि ईश्वर अच्युत इधर बैठे हैं, विष्णु देवेश्वर स्वामीन माधव केशव आपको नमस्कार है। एष विष्णु रयम कृष्णो हरिरीशयितोच्युत नमोस्तु विष्णु देवेश स्वामीन माधव केशव। इस रूप से उस रात में महान कोलाहल होने लगा, तब सिंह बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगे, प्राणियों की हत्या करने के लिए शेर दहाड़ रहे हैं बहुत जोर से। अब क्या हो रहा है, मृगों के पीछे दौड़ते और भौंकते हुए कुत्तों, भयभीत मृगों, रीछों, व्याघ्रों और चिघाड़ती हाथियों का गर्जन चारों ओर से गूंजने लगा, मानो प्रचंड समुद्र का घोष सुनाई पड़ रहा। उस समय रात्रि में तीनों लोगों को भयभीत करने वाला महानाद प्रकट हुआ। वैसे महान कोलाहल को सुनकर वहां बैठे हुए संपूर्ण जगत के अधिपति भगवान श्री कृष्ण की समाधि टूट गई। फिर सोचने लगे कि कैसा महान कोलाहल होने लगा है, हो रहा है, ये किसका ऐसा शब्द सुनाई दिया जो मेरी स्तुति से युक्त है, ये क्या हो रहा है, मतलब हत्या भी हो रही प्राणियों की और मेरी स्तुति भी हो रही। अहो, इस मन में दौड़ते हुए कुत्ते और भागते हुए समस्त मृगों का ये महान कोलाहल, शिकार खेलने की बड़ी भारी आवाज आश्चर्य की वस्तु है। चारों ओर फैला हुआ ये कोलाहल मेरी स्तुति से मिश्रित वचनों द्वारा व्याप्त है, मेरी स्तुति के वचन भी हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, हत्या की जा रही है पशुओं की। मन ही मन ऐसा सोचकर संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए उस महान कोलाहल का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां सावधान होकर बैठे। अब समाधि टूट गई, अब देख रहे हैं चारों तरफ, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। इतने ही में बहुत से मृग भागते हुए उधर ही आ निकले जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। क्यों? अपनी रक्षा के लिए। साथ ही उनका पीछा करता हुआ कुत्तों का झुंड भी आ पहुंचा, कुत्ते मारने वाले। तब सैकड़ों हजारों मशालें जल उठी जिनसे सारा अंधकार दूर हो गया और दिन के समान प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश। तब वहां भूतों के समुदाय दिखाई दिए, महाभयंकर पिशाच गर्जते और भांति भांति के शब्द कर रहे थे, वे कच्चे मांस खाते और बहुत सा रक्त पीते हुए वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर था, वे सभी पिशाच विकराल मुख वाले थे। कितने ही मृग उन पिशाचों द्वारा मारे गए और मारे जा रहे थे, कितने धराशायी हो चुके थे और बहुत से तत्काल गिर रहे थे। बाणों से घायल हुए मृग और हाथी इधर उधर भाग रहे थे। तत्पश्चात वहां भगवान श्री कृष्ण जहां विराज रहे थे, हजारों मृग लगातार भागते चले आए। किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। और देवेश्वर श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए, और कहीं शरण नहीं थी। ये बात हुई थोड़ी देर में बहुत से विकृत आकार वाले पिशाचियां वहां आ गई, विकृत आकार वाली विकराल पिशाचियां आ गई जहां भगवान केशव विराजमान थे। वे सबके सब पुत्रवती थीं, उनके दर्शन मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएं, इतने भयानक। कौन थी वो? पिशाचियां थीं पुत्रों के साथ। उसी प्रकार कुत्तों का समुदाय भी वहां आकर इधर उधर विचरने लगा। तत्पश्चात उन मृगों द्वारा घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण उन सबको वहां आया देख महान आश्चर्य में पड़कर उन सबकी ओर देखने लगे। तथा सा भगवान विष्णु सर्वमालोक्य वेष्टितः विस्मयं परमं गत्वा पश्यन्नास्ते स्म केशवः। वे सोचने लगे ये किसका महान कोलाहल फैला हुआ है, अथवा ये किसका जन समुदाय यहां आ पहुंचा है, कौन भक्तिभाव से मेरी स्तुति करता है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। आज मेरे प्रसन्न होने पर किसको दुर्लभ परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री हरि साधारण मनुष्य के समान सोच विचार करते हुए वहां बैठे रहे। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य की चेष्टा कर रहे हैं भगवान। उन सबके पश्चात दो महाभयंकर पिशाच वहां आए जिनके मुख बड़े विकराल थे, दोनों ही ऊंचे कद के थे, रोएं पिंगल वर्ण के थे, जिह्वाएं बड़ी बड़ी थीं और थोड़ी बहुत चौड़ी थी। उन दोनों के केश लंबे और नेत्र भयंकर थे, वे हा हा ही करते हुए बात करते थे, मांस की सब का भक्षण करते और बहुत सा खून पीते थे। उनके सारे अंगों में दूसरे प्राणियों की आंतें लिपटी हुई थीं। वे विशाल काय थे किंतु उनके पेट सटे हुए थे। वे लंबे और फैले हुए सूलों में पिरे हुए नरमुंड धारण किए हुए थे। सूल लंबे लंबे थे, उनमें पिरोए हुए थे क्या? मुंड, नरमुंड पिरोए हुए थे। भुजाओं द्वारा जहां तहां से झुंड के झुंड मुर्दे खींच के ला रहे थे। वे दोनों पिशाच अपनी जाति के अनुरूप नाना प्रकार से अट्टहास करते और भांति भांति के प्राकृत वचन बोलते थे। वे अपनी जांघों और पैरों की टक्कर से बड़े बड़े वृक्षों को भी हिला देते थे, जबड़े चाटते और दांत कटकटाते थे। उनका सारा शरीर हड्डियों और स्नायु जाल से व्याप्त था, नस नाड़ियां रस्सी की भांति सर्वत्र फैली दिखाई देती थीं। वे दोनों निरंतर कृष्ण कृष्ण माधव इत्यादि नामों का कीर्तन करते थे। वदन्तो कृष्ण कृष्णेति माधवेति च संततम्। वे कहते थे हमें भगवान विष्णु का दर्शन कब होगा, वे इस समय कहाँ होंगे, हमारे स्वामी श्री हरि का निवास स्थान कहाँ है, हम किस तरह उनके दर्शन का प्रयत्न करें, इस तपोवन में देवेश्वर श्री हरि कहाँ पर हैं। स्वामिनः कुत्र वसति कुतो द्रष्टुं यतामहे अत्र वा कुत्र देवेशः कुतो नु स्थास्यते हरिः। जो साक्षात इंद्र के छोटे भाई हैं और जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं, वे श्री हरि कहाँ मिलेंगे? जिन्हें भक्तजन पुंडरीकाक्ष कहते हैं और ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उन्हें अजन्मा एवं सर्वव्यापी परम पुरुष का दर्शन करने के लिए हम आतुर हैं। कुतः कुमं पद्म पला साक्षाम साक्षात इंद्रानुजो हरि यमाहो पुंडरीकाक्षम ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाम तमजम विष्णु परमम तरजम तमजम पर पुरुषम विष्णु दृष्टुम अभ्युद्यता वयम। प्रलय काल में तीनों लोग जिन जगदीश्वर में प्रवेश कर जाते हैं, उन अजन्मा विश्व श्रेष्ठा श्री हरि का हम इस समय कैसे दर्शन प्राप्त करें? अंत काले जगन्नाथम प्रवेश जगत्त्रयम् तमजम विश्वकर्तारम कुतो द्रक्षामे सांप्रतम। जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, ये संपूर्ण लोक जिनका विस्तार है, उन्हीं सर्वेश्वर देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय आतुर हैं। यस्य विस्तार एवैश लोका प्राणी निवासिनः तं द्रष्टुं देवमीशानं यतामः सांप्रतं हरिम्। संपूर्ण जंतु जिससे द्वेष रखते हैं वे हम पिशाच हैं। संपूर्ण जंतु जिससे द्वेष रखते हैं ऐसे हम पिशाच हैं। जो जगत में सबसे भयंकर अवस्था में है वही पिशाच होनी ना जाने हमें कैसे प्राप्त हुई है और किस प्रकार बलपूर्वक हमारे भीतर प्रविष्ट हो गई है। ये मनुष्य और हड्डियों को खाने के कारण कलुषित योनि सबको भय प्रदान करने वाली है जो हमें प्राप्त हुई है। अहो, हम दोनों के पूर्व जन्मों के कर्म में केवल दुष्कर्म का ही संचय हुआ जिससे हमें कलंकित योनि प्राप्त हुई, तो भी हमें इसी में सदा परम प्रसन्नता बनी रहती है। जब तक हम दोनों का दुष्कर्म बना रहेगा तब तक हमारी उन कर्मों के अनुरूप ही पिशाच अवस्था बनी रहेगी जिससे समस्त प्राणी द्वेष रखते हैं, जो दूसरे जीवों को केवल पीड़ा देने वाले होते हैं। कौन? हम सब जीवों को पीड़ा देने वाले हैं। निश्चय ही हम लोगों ने बहुत से जन्मों में केवल पाप कर्मों का संचय किया है, कई जन्मों का पाप कर्म, तभी तो उसका घोर फल आज तक भी दूर नहीं हुआ। हम इस समय भी झुंड के झुंड कुत्ते साथ लिए प्राणियों का वध करने पर तुले हुए हैं। जगत के प्राणी पहले से बाल अवस्था में होते हैं, उस समय उनका चित्त अज्ञान में भरा है, तो कुछ सत्कर्म जानते नहीं, इस कारण सत्कर्म को नहीं जानते। तब युवावस्था में प्रवेश करते हैं, विषयों के आकर्षण से उनकी बुद्धि भ्रांत हो जाती है, तो सत्कर्म नहीं होता। साथ ही उनके पास विषयों का संग्रह बढ़ जाता है, अतः विषयों में रचे पचे रहकर वे कभी अपने कल्याण के लिए यत्न नहीं करते। जिनका चित्त विषयों में आवेश हो जाता है वे मनुष्य नहीं समझ पाते कि कल्याणकारी कर्म क्या होता है। तत्पश्चात जब वृद्धावस्था आती है तब वे बहुत सी व्याधियों द्वारा घिर जाते हैं। नाना प्रकार के दुख देने वाले भयंकर ज्वर आदि रोग उन्हें दबा लेते हैं, फिर इधर उधर भटकने वाली इंद्रियों के वशीभूत होकर वे अपने कल्याण का प्रयास नहीं करते। अच्छा कर्म तो होता ही नहीं, न बचपन में होता है, न जवानी में होता है, न बुढ़ापे में होता है। तब मृत्यु हो जाने पर वे जीव गर्भवास में आते हैं और विष्ठा मूत्र की कीच से भरे हुए घोर गर्भाशय में अनेक प्रकार के दुखों से आक्रांत होकर निरंतर निवास करते हैं। कौन कह रहे हैं? दो पिशाच बोल रहे हैं। इसके बाद वे उस घोर गर्भ से निकलकर पुनः संसार चक्र में पड़ जाते हैं। यहां भी वे एक दूसरे की हिंसा करते हुए पाप कर्मों का संचय में लगे रहते हैं। इस प्रकार दुखों से भरे हुए महाघोर संसार में वे अज्ञानवश नाना प्रकार के पाप कर्म ही किया करते हैं। संसार का ये बंधन सभी प्राणियों में विस्तार पूर्वक व्याप्त है। शस्त्रों के प्रहार से और भी बहुत से लौकिक उपायों द्वारा इस संसार का उच्छेद नहीं किया जा सकता, यानी बंधन को काटा नहीं जा सकता शस्त्रों के प्रहार से भी। कोई ऐसा शस्त्र नहीं है कि उसका प्रहार करके संसार के बंधन को काटा जा सके। ऊंची बुद्धि वाले मनुष्य इस संसार से विरक्त नहीं होते हैं। वे सोचते हैं मैं इस राजा का वध करके इससे धन हरण कर लूंगा, इस धन को चुराकर घर ले जाऊंगा, उसे उपभोग में लाऊंगा, ये शांत और दुर्बल है और मैं बलवान हूं, तो क्या करूंगा, ले लूंगा। धन संपत्ति, मैं से डांट फटकार कर इसका धन ले लूंगा। इन्हीं चिंताओं में व्यग्र हुए मूर्ख मनुष्य दूसरे प्राणियों को पीड़ा देते रहते हैं। दुख के मूल कारण इस संसार रूपी रोग को सदा के लिए सब प्रकार से मिटाने के निमित्त एकमात्र उत्तम औषध संघ चक्र और गदा धारण करने वाले आदिदेव पुराण पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओं की आत्मा भगवान श्री हरि ही हैं। भेषजम सर्वथा देवा संग चक्र गदाधर आदिदेव पुराणात्मा आत्मा ब्रह्म वेदाम सदा। अतः हम लोग सर्वथा संपूर्ण प्रयत्न करके श्री हरि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए वे दोनों पिशाच भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। और उनको पता नहीं कि सामने वही हैं जिनको ढूंढ रहे हैं, नहीं जानते हैं। ते वयम सर्व यत्नेन द्रक्ष्यामः सर्वथा हरिम इत्थम पिशाचो भासन्तो प्रादुरास्ताम हरे पुरा। इति श्री महाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्य पर्वणि कैलाश यात्रायाम एकोनाशीतितमोध्याय। तब उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांस भक्षी पिशाचों को देखा जो हाथ में मसाल लिए हुए वहां पर आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वरों के भी ईश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखकर वे दोनों पिशाच उन केशव के निकट आए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, बहुत निकट आ गए दोनों, मतलब बीच में करके यानी दोनों अगल बगल में आ गए, बहुत सट करके खड़े हो गए। तौतगत्वा समुन्देशम पिशाचो केशवस्यः ततस्तावो चतुर्विष्णुम अंतरीकृत्य केशवम। मानव आप कौन हैं? भगवान से बोलते हैं, हे मनुष्य आप कौन हैं? पहचान नहीं पाए। हे मनुष्य आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? कहां से आपका स्वभागमन हुआ है? जंगली पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं? ये वन मनुष्यों से रहित है, यहां तो कोई मनुष्य नहीं आता। चीतों से घिरा भरा हुआ, पिशाचों से सेवित है, हिंसक जंतुओं का निवास स्थान है और व्याघ्रों से भरा हुआ है, तो आप कहां से आ गए? यहां तो कोई मनुष्य आ नहीं सकता। आप बड़े कोमल प्रतीत होते हैं, आपका प्रत्येक अंग अत्यंत सौंदर्य से संपन्न है, आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं, आपके नेत्र प्रफुल्ल दल के कमल दल के समान सुंदर और विशाल हैं, आपकी अंग कांति श्याम है, आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं, साक्षात श्रीपति से लगते हैं, श्रीपति जैसे लगते हैं। सुकुमारो न वद्यांग साक्षात विष्णु रिवापर पद्म पत्रे क्षण श्याम पद्माभा श्रीपति स्वयं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप यहां पधारे हैं। अंतर केवल एक दो भुजाएं हैं और हमारे स्वामी की चार भुजाएं हैं। आप मनुष्य हैं इसलिए दो भुजाएं हैं, लेकिन बाकी बिल्कुल सब कुछ वैसे ही लगते हैं साक्षात श्रीपति जैसे। आप देवता हैं या यक्ष हैं या गंधर्व हैं या किन्नर हैं, इंद्र हैं या कुबेर हैं अथवा यमराज हैं या वरुण हैं, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यानस्थता करते अकेले बैठे हैं, आप कौन हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं। इंद्रो वा धनंदो वापि यमोथ वरुणोपि वा एकाकी विपने घोरे ध्यान अर्पित मना इव। दूसरों को मान देने वाले हे मनुष्य आप ठीक ठीक बताइए, मैं यथार्थ रूप से आपका परिचय जानना चाहता हूं। इन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूं, प्राकृत मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते और जानते हैं, यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूं इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूं। क्षत्रियोस्मीति मामाहुर मनुष्या प्रकृति स्थिता यदुवंशे समुत्पन्न छात्रम वृत्तम अनुष्ठितः। मैं तीनों लोकों का पालक और सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूं। दोनों तरह की बातें बोल रहे हैं, मैं तीनों लोकों का पालक तो कौन हो सकता है भगवान के सिवा। वसंत दुष्टों पर शासन करने वालों, इस समय उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता हूं, यही मेरा वृतांत है। अब अपना परिचय दो, तुम दोनों कौन हो? ये तो ब्राह्मण का आश्रम है, यहां तुम किस लिए आए हो? ब्राह्मणों का आश्रम है ये, तपस्या करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, तुम दोनों किस लिए आए हो? ये महान पवित्र स्थान है, इसे बद्री कहते हैं, बहुत से ब्राह्मण यहां वास करते हैं, क्षुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया है। सिद्ध पुरुषों ने सदा इसका सेवन किया है, तपस्या में लगे हुए तपस्वी यहां सब ओर निवास करते हैं, यहां आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते कभी नहीं देखे गए और न कभी मांस भक्षी पिशाचों का ही कभी दर्शन हुआ है। यहां मृगों को वध नहीं करना है भगवान, ये स्थान जो है मृगों के वध करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां कभी शिकार नहीं होता है। जो क्षुद्र स्वभाव वाले कृतघ्न और नास्तिक हैं उन्हें तीर्थ में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं? हरि बोल। सुनो ध्यान से, बहुत लाभ है। मैं इस देश का रक्षक हूं, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यत्न पूर्वक उसका शासन करूंगा। भगवान कोमल शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं उनके लिए कि ये यहां उत्पात क्यों कर रहे हैं तुम लोग, लेकिन कोमल शब्दों में बोल रहे हैं। क्या? यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यत्न पूर्वक उसका शासन करूंगा। मतलब यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम दोनों कौन हो, कहां रहते हो? ये विशाल सेना किसकी है? इससे आगे इस वन में आगे प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां ऋषि रहते हैं, उन तपस्वी ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यहीं ठहर जाओ और सुखपूर्वक बात करो, अन्यथा वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी मैं रोकूंगा, भगवान बोले। इस प्रकार पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वो सुनाने लगा, मतलब बिल्कुल सरल हृदय के। पिशाच बोला, अच्छा बताता हूं, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं पहले आदिदेव अजन्मा सर्वश्रेष्ठ निष्पाप पवित्र पापहारी जगदीश्वर विश्वपालक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक ठीक बताऊंगा। श्रोयतामभिधास्यामि समाहित मना भव नमस्कृत्य जगन्नाथम हरिम कृष्णम जगत्पतिम आदिदेवम अजम विष्णु वरेण्यम मनघम शुचिम वक्ष्यामि सकलम यद्वन तथा श्रृणु यदीक्षसि। कितने सुंदर सुंदर नाम लेता है, है? मैं घंटाकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक पिशाच हूं। क्या नाम? घंटाकर्ण। मेरी दृष्टि बड़ी भयानक है, मैं मांस भक्षी विकृतांग घोर और साक्षात दूसरे काल के समान प्राणियों का हिंसक हूं। शंकर जी के सखा साक्षात कुबेर का मैं अनुचर हूं और ये मेरा सगा छोटा भाई है जो काल का भी काल है। ये जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है इसका उद्देश्य है भगवान विष्णु की पूजा। ये सेना मेरी है और ये कुत्तों का झुंड भी मेरा है। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश से यहां आया हूं, पिशाच वेश से घिरा हुआ पापी हूं। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांधकर घूमता था कि कहीं मेरे इन कानों में विष्णु का नाम ना प्रविष्ट हो जाए। कुछ भी विष्णु का नाम ले तो ऐसे ऐसे कर देगा तो बड़ी जोर से घंटा बजेगा कान में, तो विष्णु का नाम ना प्रवेश हो जाए। घंटा कर्ण बड़ा भारी घंटा लगाया था, ऐसा जरा सा ऐसे कर देगा तो बड़ी जोर से घंटा बजेगा, विष्णु का नाम प्रवेश नहीं होना चाहिए मेरे कानों में। शिव जी का भक्त था और विष्णु की निंदा करने वाला था, मुझे इसी की चिंता बनी रहती थी, ये बड़ी भारी चिंता थी कि कान में विष्णु का नाम ना चला जाए, इसलिए बड़ा भारी घंटा बांधा हुआ था। बस जरा सा कर दे बड़ी जोर से घंटा बजेगा। एक दिन कैलाशवासी शंकर जी के पास पहुंचकर मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनकी स्तुति में लगा रहा। इससे प्रसन्न हो शंकर जी ने मुझसे कहा तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। क्या मुक्ति मांगी? किससे? शंकर जी से। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते देख त्रिलोचन शिव फिर मुझसे बोले कि सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुक्तिम प्रार्थय मानम माम पुनराय त्रिलोचन मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। देखो ये यहां का है श्लोक, जो धर्म दिया जाता ना, ये कहां का है? यहां का है। शिव जी ने कहा अतः तुम बद्री तीर्थ में जाकर वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। तस्मान गत्वा च बदनी तत्र आराध्य जनार्दनम मुक्तिम प्राप्नुहि गोविंद गोविंदान नर नारायण आश्रमे। देवाधिदेव देवाधिदेव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुड़ध्वज गोविंद के महत्व को समझा। अब घंटा उतार दिया कान से, अब कान से घंटा उतार दिया क्योंकि महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मैं इस स्थान में आया हूं। इत्युक्तो देव देवेन सूरिना ज्ञातवान अहम तमेव परमं मत्वा गोविंदं गरुड़ध्वजं तस्मात् प्रार्थय मानासं मुक्तिं देशं अमुं गतः। यदि तुम्हें कौतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। भगवान से बोल रहे हैं कि तुम तो मनुष्य हो, मैं तुमको सुना रहा हूं अपनी बात। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारावती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जिसमें यदु एवं विष्णु वंश के लोग रहते हैं। वो पूरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है, उसी में समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। और भगवान ने तो कह दिया था यदु वंश में जन्मा हूं, है ना, लेकिन वो समझ नहीं पाया। अन्यच्चा सुनो मे कार्यम यदि कौतूहलम तब पुरी द्वारावती नाम पश्चिम से तटे यदि वृष्णि समाकीर्णाम सागरोन्मे समाकुलाम अध्यास्ते सा हरिर्विष्णु ताम पुरीम पुरुषोत्तम। हे मनुष्य, भगवान से बोल रहा है, हे मनुष्य, लोक हित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के लिए हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकले हुए हैं, वहां जा रहे हैं उनका दर्शन करने। और उसको पता नहीं कि वहां से भगवान आए तुम्हें दर्शन देने के लिए। हम जा रहे हैं वहां, आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना है। दृष्टुम लोक हितार्थाय वसंतम द्वारकाकुले द्वारकापुरे निर्गतः सांप्रतम मर्त्य वैमेते सहानुगे विष्णु सर्वेश्वरा साक्षात द्रष्टव्योस्माभिरद्य वे। वे श्री हरि ही संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के कारण पालक कर्ता हर्ता जगदीश्वर सबके आदि पुरुष उद्गम स्थान और बीज हैं। लोकानां प्रभुवा पाता कर्ता हर्ता जगतपति आदि सही समस्त प्रभुवा कारणम हरि। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता पुराण पुरुष प्रभुओं के भी प्रभु और सत्स्वरूप हैं, उन आदिदेव वरदायक एवं वरेण्य भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम लोग आतुर हैं। कर्ता समस्तस्य हरि पुरातन प्रभु प्रभु नाम अपि यह सदात्मक तमादिदेव वरदम वरेण्यम द्रष्टुम हरिम संप्रति संयता स्म। जिनकी कृपा से प्राणियों गंधर्वों और बड़े बड़े नागों से युक्त ये जगत इस रूप में प्रकट हुआ, उन जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए समय हम सब लोग आतुर हैं। यस्य प्रसादान् जगदेवमासीन् स प्राणिगन्धर्वमहोरघोरघम् देवम् जगद्योनिमजम् जनार्दनम् द्रष्टुम् हरिम् सम्प्रति संयता स्मः। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से ये विश्व प्रकट होता है, कल्प के अंत में पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। स्थिति काल में भी ये सारा विश्व जिन साक्षात श्री हरि के अधीन है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हरि का हम दर्शन करेंगे। यशोदरान विश्वमिदं प्रभूतम रयम जतस्मिन् समुपेति कल्पे तस्य साक्षात् वशवर्ती विश्वम द्रक्षामि देवम पुरुषोत्तमम हरिम। जो विष्णुदेव इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं और जो श्री हरि ही इसका पालन और संहार करने वाले भी हैं, उन आदि देव, उन आदि पुरुष, पुरातन देवता, प्रभावशाली, अविनाशी, नित्य स्वरूप भुवनेश्वर श्री हरि का हम नित्य दर्शन करेंगे। सृष्टा च योऽसौ सकलस्य देवः पाता च हर्ता च हरि स एव द्रक्ष्यामि नित्यं भुवनेश्वरं हरिं पुराणमाद्यं प्रभु विष्णुमव्ययम्। वे एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के भी उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता हैं। योग से विशुद्ध बुद्धि वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योग की साधना करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्ती वृत्ति उन्हीं में लगी हुई है। अजस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता भवस्य कर्ता हरिरेक एव तम योगिनो योग विशुद्ध बुद्धि लभे मते नैव मते समाकुला। जगत के पालक और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर लेकर साक्षात शिशु भाव को प्राप्त हो अक्षय वट के पत्र के दोनों पर पैर फेंकते हैं और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। बालक के रूप में पैर फेंकते हैं और हाथ हिलाते हैं, सबको तो अपने उतर में समा लेते हैं और बालक बनकर के अपना मस्ती लेते हैं। निगीरे विश्वम सकलम जगतपति सेते शिशुत्व समवाप्य साक्षा वटस्य पत्रे जगताम निवास पादो विक्षिप्य करो विधन मन। जिनके उदर में प्रवेश करके पुरातन देवर्षि मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया था, उस समय वहां ये सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार दिखाई दिया जैसा कि पहले उनके उदर से बाहर दिखाई देता था। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल से उस शिशु के उदर में चले गए तो सब पूरा सृष्टि देखी। यशोदरे देव मुनि पुरातनो ददर्श लोकान अखिलांत माया प्रविष्ट विश्वम सकलम यथावन बहिर्यथा भूतम अबोधितम महान। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर लीन करके वे महात्मा पुरुषोत्तम एक अरणों के जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ से चमन डुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी। निगीर्य विश्वम जगदादि काले शेते महात्मा जलधेर जलौघ है देव्या श्रिया चामर लोल हस्तयाम निषेव्यमाण पुरुषोत्तम स्तदा। जगत की सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान की नाभि से सुवर्ण के समान कांतिमान एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता था, वो विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म स्थान था। जिन महान विष्णु ने आदि काल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले वराह रूप होकर महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था, जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता साक्षी यज्ञ रूप और यज्ञ के अधिपति हैं और समस्त जगत का पालन करते हैं, उन्हीं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम आतुर हैं। कोई आराधक उन विष्णुदेव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध अद्वैत सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग आतुर हो रहे हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति स्मृति और न्याय में अपने चित्त को लगाए रखकर जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं और पुराण वेत्ता पुरुष जिन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बतलाते हैं, उन्हें सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए हम आतुर हैं। जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य वरदायक वरेण्य और परम तत्व रूप बताते हैं, साथी जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हीं जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय आतुर हैं। आदिकाल में जिन सूत्र स्वरूप जगदीश्वर में ये संपूर्ण जगत मनके की भांति पिरोया गया था, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम आतुर हैं। अब इस समय और क्या कहें, क्या बोले, कई लोग सो रहे हैं है? वो बेचारे पिशाच तो विष्णु का दर्शन करने के लिए आतुर हैं और कई लोग सो रहे हैं। हे मनुष्य, अब हम अन्यत्र जाते हैं, तुम भी क्षणुसार और कहीं जा सकते हो। हे मनुष्य, हम लोग जा रहे हैं और तुम भी क्षणुसार जा सकते हो। हमारे नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई, अतः इस समय तुम इच्छानुसार जहां चाहो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विलक्षण पिशाच ने उसी समतल प्रदेश में बहुत सा खून पीकर इच्छानुसार मांस खाया और जल का आचमन करके वहीं पास में अपनी साधन सामग्री रखी। अतड़ियों का वो जो विशाल पास था बंडल वहीं पर डाल दिया। इसके बाद कुशायुक्त आसन बिछाया, उसकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया और सुख आसन बैठकर वहां वो कुत्ता पालक पिशाच समाधि के लिए प्रयास करने लगा। उस समय वो भयानक पिशाच एक चित्त हो भक्तिवत्सल भगवान केशव को नमस्कार करके इस मंत्र में स्तोत्र का पाठ करने लगा। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय चक्रिणे नमस्ते गदिने तोभ्यं वासुदेवाय धीमते ओम नमो नारायणाय विष्णुमे प्रभे विष्णवे मम भूयान मना शुद्धि कीर्तना तव केशव जन्मेदमीदृशं घोरं मा भून मम दुरासदं देवदूतो भविष्यामि स्मरणा तव गोपते। हे नारायण, अब पुनः मुझे ऐसा दुखप्रद भयंकर जन्म ना प्राप्त हो, मैं आपके स्मरण से देवदूत बन जाऊं। तब चक्र प्रहारेण कायो नश्यतु माम कहम मम भूयो भवो माम भूत ऐसा मे प्रार्थना विभो। प्रभो, आपके चक्र प्रहार से मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए और फिर मुझे संसार बंधन प्राप्त ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, सदा सबके दाता हैं। देवेश्वर, जहां जहां मेरा जन्म हो वहां वहां आप मेरे हृदय में विराजमान रहे, ये मेरी दूसरी प्रार्थना है। अर्थिनाम कल्प वृक्षोसी दाता सर्वस्य सर्वदा यत्र यत्र भवे जन्म तत्र तत्र भवान हृदय वर्तताम मम देवेश प्रार्थना सा मम पराम। देव, आपको नमस्कार है। देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विघ्न चलती रहे। देव, आपको सदा ही मेरा नमस्कार है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम भवत्येवं सदा मम निर्विघ्न प्रार्थना देव नमस्ते स्तु सदा मम। जब मेरा मरण काल उपस्थित हो उस समय मेरी स्मरण शक्ति में भ्रम न उत्पन्न हो। देव, प्रतिदिन और प्रतिक्षण मेरा चित्त आप में ही स्थिर रहे। आप मुझे ऐसी प्रेरणा देते रहे। आपके चित्त में कभी ऐसा भाव ना आए कि एक क्रूर पिशाच है। ये प्रार्थना कर रहे, इस पर क्या दया करूं। ये आपके दिमाग में ये विचार ना आए, ये प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पर मैं क्या दया करूं, ये तो क्रूर पिशाच है। यदा मे मरणम भूयात तदा मा भूत स्मृति भ्रम दिने दिने क्षणम चित्तम त्वयि संतम भवत्विति एवं प्रेर माम देव मा भूत ते चित्तम ईदृशम संसोयम पिशाचोयम दयास्मिन का भवेदिति। प्रभो, देव, आप तो ऐसा ही विचार करें कि बेचारा मेरा सेवक है। भगवान, प्रभो, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे और अब मेरी इंद्रियां विषयों में ना फंसे। एवं चिंतय माम देव भृत्योमयम इति प्रभो पर पीड़ा नमत्तोस्तु नमस्ते भगवन प्रभो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु मा भुवन सांप्रतम हि मे। केशव, अंत काल में आपकी कृपा से मेरी भी ऐसी स्थिति हो। हरे, जल सदा मेरी रक्षा करे, पृथ्वी भी रक्षा करे, सूर्यदेव मेरी रक्षा करें। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपको नमस्कार है। जलम माम रक्षताम नित्यम पृथ्वी रक्षताम हरे सूर्यो माम रक्षताम विष्णु नमस्ते सूर्य तेजसे। जनार्दन वायु और आकाश दुख से मेरी रक्षा करें। देव सर्वस्वरूप परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ मेरा मन विषय और भेद बुद्धि की रक्षा करे, अर्थात वो ना तो विषय परायण हो ना भेद बुद्धि को अपनाए। इसके विपरीत यदि मन घोर विषय में फंस जाए तो वो पुरुषों का नाश कर डालता है, दूसरों के पीड़ा रूप पापों में फंसा देता है। देव जनार्दन आप मेरे उस मन की बारंबार रक्षा करें, मेरे मन में मलिनता ना रहे, मेरा मन निर्मल हो जाए। सुन रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं। मनस्तन रक्षताम देव भूयो भूयो जनार्दन मां भून मनसी कालुष्यम मनो में निर्मलम भवे। क्योंकि जीव का जो मलिन चित्त है उसे नरक में गिराता है। मन के शुद्ध होने से इंद्रियां भी निर्मल हो जाती हैं, और यदि मन मलिन हो तो इंद्रियां भी मलिन होने के कारण इस जगत में कोई सत्कर्म नहीं कर सकती। केशव जो मनुष्य अपने अपवित्र मन को मुट्ठी में किए बिना केवल अंगों का बाहर से धोता है, अंगों को धोता है, उसे क्या लाभ होगा? उसका केवल बाहर से शुद्धि के लिए आग्रह व्यर्थ है। अतः जनार्दन संपूर्ण प्रयत्न द्वारा आप मेरे चित्त की रक्षा कीजिए। जीवों की याचना पूर्ण करने वाले देव इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, इसको रोकिए। तस्मात सर्व प्रयत्न चित्तम रक्ष जनार्दन बलवान इंद्रिय ग्रामो वारिये नम जनार्दन। जगन्नाथ मेरी वाणी को आप पर निंदा से बचाइए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। जनार्दन मेरे मन को पराय धन और पराय स्त्री से दूर रखिए। केशव आपकी कृपा से मेरे मन में सब प्राणियों के प्रति दया हो। प्रभु आप में ही मेरी अविचल भक्ति हो और समस्त प्राणियों के प्रति दया हो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी एक ही बात सुन लीजिए। तो ये भते भक्ति रचना भूयान भूतेषु मे दया बहुनात्र कि मुक्त न सुनो स्वेदम बचो मम। देव देवेश्वर जनार्दन सुख में दुख में राग और भोजन में चलने फिरने में और जागृत स्वप्न अवस्थाओं में सर्वत्र आप में ही मेरा मन रमन करे, आपको नमस्कार है। सुख दुखे च रागे जा भोजने गमने तथा जागृत स्वप्ने सु सर्वत्र त्वये वै रमताम मनहा मामकम देव देवेश नमस्ते स्तु जनार्दन। इस तरह बोलता हुआ वो अत्यंत भयंकर पिशाच जो केवल निम्न कोटि का था, हृदय से नहीं समाधिस्थ हो गया, वो महान भगवत भक्त था। क्या सुना, क्या सुना? समाधिस्थ हो गया, वो जाति से निम्न कोटि का था, हृदय से नहीं था, समाधिस्थ हो गया। वो मांस भक्ति पिशाच अपने शरीर को अतड़ियों के पास से बांधकर निश्चल चित्त के द्वारा सुखपूर्वक बैठ गया और पीताम्बरधारी मंगलकारी सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करने लगा। निश्चले न वे मनसा सुखमास्ते में संयतः ध्यायन हरिम जगन योनिम विष्णु पीताम्बरम शिवम। जो नित्य शुद्ध ज्ञान गम्य समस्त देहधारियों के कारण रोग शोक से रहित अद्वितीय और आदि पुरुष हैं, उन मुकुंद देव का चिंतन करने लगा। मुकुंद मादि पुरुषम एकाकारम अनामयम नित्यम शुद्धम ज्ञान गम्यम कारणम सर्व देहिनाम। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए सनातन प्रणव का जप करते हुए उस वायु शून्य प्रदेश में जलने वाले दीपक की भांति अविचल भाव से स्थित होकर वो निरंतर प्रणाम और मंत्र पाठ करने लगा। अपने चित्त को एकाग्र रखते हुए उसने भगवान विष्णु में समर्पित कर दिया, उस चित्त को हृदय कमल के भीतर दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया। हृदय कमल के आसन पर जगदीश्वर श्री हरि को प्रतिष्ठित करके वो महायोगी महान मांस भक्षी पिशाच, देखो महायोगी और महान मांस भक्षी पिशाच सुखपूर्वक बैठा रहा और ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन रूपों में विराजमान सनातन विष्णु का वहां स्मरण करता रहा। तब उन भगवान श्री कृष्ण उस समय उस पिशाच की ओर देखा जो अपने आत्म स्वरूप से हरि का ही चिंतन कर रहा था, शुद्ध बुद्धि से संपन्न था। वो हृदय कमल में स्थित होकर साक्षात नाम के साथ एक बार उच्चारण करता था और विष्णु से ही अभीष्ट मनोरथ के लिए प्रार्थना करता था। इस प्रकार एकांत में ध्यान लगाए घंटा कर्ण को श्री हरि ने देखा। उस समय उन जगदीश्वर श्री हरि ने सोचा इसके पुण्य संचय में क्या कारण है, इतना पापी, इसका पुण्य इतना कहां से हो गया। उसके पुण्य कर्म के कारण के विषय में चिरकाल तक चिंतन करके वे इस निश्चय पर पहुंचे। यानी भगवान को भी बहुत देर तक चिंतन करना पड़ा, कितना पुण्य इसको मिला, कहां से कितना ध्यान कर रहा है। बहुत समय के बाद उनको जो है समझ में आया। क्या समझ में आया, अब सुनिए ध्यान से। अचिंत्यं जगन्नाथा कारणं पुण्य संचये ध्यात्वा तु सुचिरं विष्णु कारणं पुण्य कर्मणः। ये कुबेर के उपदेश से पृथ्वी पर अनेक बार वासुदेव, कृष्ण, माधव इत्यादि नाम ले लेकर निरंतर मेरा कीर्तन करता रहा है। नाम का महात्म्य देखो, कितने बुरे कर्म है। ये कुबेर के उपदेश से ये क्या करता है, नाम बहुत लेता है मेरा, और एक एक बात में कितने नाम उच्चारण करता है। धनस्योपदेशेन पठन शुभम सोचितो वासुदेवे इति कृष्ण इति माधवे इति च माम सदा। भगवान को भी सोचना पड़ा कि भाई इतना इसका पुण्य कहां से हो गया, कि चित्तवृत्ति इतनी निश्चल जबकि मांस खाता है। कितने जनार्दन, हरे, विष्णु, भूत, भावन, भावन, निराकार, निराकार नहीं, निराकार, निराकार मतलब मनुष्य के आकार वाले, निराकार नहीं बोलते, निराकार, निराकार, जगन्नाथ, नारायण, परायण इत्यादि नामों द्वारा नित्य नित्य दिन रात मुझे ही पुकारता रहा। सोते, जागते, खड़े होते, खाते पीते, चलते फिरते और बोलते समय मेरे ही नामों का कीर्तन करता आया है ये। जनार्दन हरे विष्णु भूत भावन भावन नराकार जगन्नाथ नारायण परायण इति माम नाम अभिर्नित्यम प्रत्येव दिवानिशम स्वपंजाग्रन तथा तिष्ठन भुंजन गच्छन तथा वदन। पिटारी की पिटारी मांस खाते और खून पीते समय भी ये मेरे नामों की रट लगाता रहा। क्या समझे, चिरकाल तक प्राणियों को कष्ट देकर बहुत से मृगों का वध करके भी उनके हनन और भोजन के समय जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में और सभी कार्यों में ये मुझे वासुदेव को ही कर्ता मानता आया है। किस किस घोर कर्म के विनाश का अब समय प्राप्त हुआ है, अब विनाश होना है इसके घोर कर्मों का। ऐसा निश्चय करके वे जगन्नाथ उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तब जगदीश श्री हरि ने उस अनन्य भक्त प्रसाद को भी उसके शुद्ध अंधकरण में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। हरि बोल। उस भयंकर प्रसाद ने भी अपने अंतःकरण में रेशमी पीतांबरधारी, कमल नयन, श्याम सुंदर, पापहारी केशव का दर्शन किया। सचा घोरा पिशाचोपी ददर्शात्मने केशवम पीत कौशे वसनम पद्माक्षम श्यामलम हरिम। वे भगवान विष्णु हाथों में संघ चक्र और गदा लिए हुए थे, उनके गले में वनमाला, मस्तक पर किरीट और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उनका हित प्रदेश श्रीवत्स की आभा से आच्छादित हो रहा था। संकिनम चक्रिणम विष्णुम श्रृंगिणम गदिनम विभुम किरीटिनम कौस्तुभिनम श्रीवत्साच्छादितो रसम। वे नीलवर्ण की मेघ की भांति कमनीय कांति धारण करते थे, गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे और भव भय भंजन करने वाले थे। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थीं, उनकी वाणी मंगलमयी थी। वे सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप प्रभु निश्चल भाव से खड़े हैं। हृदय में भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। नील मेघ निभम कांतम गरुड़स्थम प्रभंजनम चतुर्भुजम सुविगिरम निश्चलम सर्वगम शिवम। उनका ना कहीं आदि है ना अंत, वे नित्य मायावी हैं, उन पर किसी की माया नहीं चलती है। उनकी माया सब पर चलती है और उन पर किसी की माया नहीं चलती। वे सत्य युक्त हैं, सदा शुद्ध, बुद्धिगम्य और नित्य निर्मल हैं। अनादिनदनम नित्यम मायाविनम अमायिनम सत्ययुक्तम सदा शुद्धम बुद्धिगम्यम सदामलम। इस प्रकार हृदय के भीतर प्रकट हुए जगदीश और विष्णु का बारंबार दर्शन करके आंख खोले बिना ही अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। मनस्येवम जगन्नाथम दृष्ट्वा विष्णु मने कथा अनुमिल्येन अनुमिल्ये विनयने कृतार्थोऽस्मीत्य मन्यते। अहो, अब सर्वव्यापी शुभ स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु हरि ने मुझे दर्शन दिया है। आंखें बंद करके आंखें बंद किए के ही बोल रहा है। निश्चय ही वे श्री हरि मुझ पर प्रसन्न है, इसी से मैं उनका दर्शन पा सका हूं। अहो दृष्टो हरिर्विष्णु साक्षात् सर्वत्र गः शुभा प्रसन्नो हि हरिर्मह्यम् तेनाहम् दृष्टवान् हरिम्। मेरे जन्म का प्रयोजन सिद्ध हो गया, इससे बढ़कर मेरे लिए अब और कौन सा कर्तव्य बचा। मेरी अज्ञान की गांठें खुल गईं, इंद्रियां भी भस्म हो गईं। श्री हरि का स्मरण होने पर मैं ऐसा मानता हूं कि प्रायः मेरा मन जीत लिया गया। मेरी त्रिविध एषणाएं लोकेषणा वित्तेषणा पुत्तेषणा दूर हो गई। लोकेषणा माने सम्मान पाने की इच्छा, और वित्तेषणा धन पाने की इच्छा, और पुत्रेषणा पत्नी पुत्र पाने की इच्छा, और मैं पूर्ण प्रसन्न हो गया हूं। अब मैं इन पिशाचों से भी संबंध छूट गया। वो जो मेरा सगा छोटा भाई है वो भी भगवान विष्णु का भक्त है, अतः समयानुसार मुक्त होकर वो भी विष्णु की प्राप्ति करेगा। ऐसा सोचकर उसने आंतों का पास काट डाला और क्रमशः प्राणों को उन्मुक्त करके संपूर्ण दिशाओं की ओर देखकर शरीर को सुगम करके उसके भीतर सुखपूर्वक प्रविष्ट हुआ। तब पिशाच ने जगत के स्वामी जगत गुरु श्री कृष्ण का दर्शन किया। समाधि अवस्था में उसने श्री हरि के रूप की जैसी झांकी की थी, उसी रूप में उसने भूमि पर बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। अब आंखें खोली, हरिओम, तो देखा अरे वही तो है। उन्हें देखते ही वो मांस भक्ति पिशाच बोल उठा, यही विष्णु है, यही विष्णु है, क्योंकि समाधि में वे मुझे जिस रूप में दिखाई दिए उसी रूप में यहां भी उनका दर्शन हो रहा है। ऐसा कहकर वो पुनः नाचता और हंसता हुआ बोलने लगा, अयम विष्णुर अयम विष्णुर इत्युचे पिशितासन समाधोचा यथा दृष्ट सोयम मत्रापि दृश्यते इत्युक्त्वा च पुनर्भूते नित्यन्यवय हसन्यवय। ये वे ही चक्रधारी सारग धनुष और बाण ग्रहण करने वाले गदाधर रथारूढ़ और ध्वज और तरकस लिए रहने वाले सहस्त्र मस्तक वाले सर्वदेवेश्वर जगत सृष्टा और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि हैं। अयम सचक्री सर सारग धनवान गदीरथि सध्वज तूर्ण पाणी सहस्र मूर्धा सकलामरेशो जगत प्रसूतिर जगताम निवास। विष्णुर जिष्णुर जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम विश्वात्मा विश्वकर्ता यः स्वयमेश सनातन अस्यैव देवस्य हरे स्तनांतरे विराजते कौस्तुभ रत्न दीपः यस्य प्रसादान जगदे ददातौ विराजते चंद्रमसेव रात्रि योऽस्य पृथ्वीं दधाराशु दंष्ट्रयां जल संचयान योऽयमेव हरे साक्षात वाराहम वपुरा स्थितः। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जो वराह रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ द्वारा के कारणों के जल से तत्काल बाहर निकाला और जल के ऊपर स्थापित किया, वे साक्षात हरि यही हैं। उन उग्र पुरुषार्थ वाले दानव बलि को बलपूर्वक बांधकर इन्हीं वामन रूपधारी श्री हरि ने देवराज इंद्र को त्रिलोकी का राज्य अर्पित किया। उस समय प्राचीन महर्षियों ने भक्तिभाव से इनकी स्तुति की। इन्हीं जनार्दन ने विकराल दाढ़ वाले महान नरसिंह रूप होकर रणभूमि में दानवों को मारा और समस्त संसार को शोक रहित कर दिया। जिन्होंने आदि काल में एक ही हाथ से मंदराचल को धारण किया और महासागर के तट पर समस्त असुरों को परास्त करके इंद्र को अमृत प्रदान किया, वही साक्षात महाविष्णु यहाँ मेरे निकट विराजमान है। जो प्रलय काल में एक अरणों के जल में मधु और कैटव नामक दो भयंकर दानवों का वध करके शेष नाग की सुखदायिनी सैया पर लक्ष्मी देवी के साथ शयन करते हैं। देवता दिन है सबका आदि, जगदीश्वर सबका धारण पोषण करने वाले अजन्मा जन्मदाता अणु से भी अत्यंत अणु परम महान स्थूल से भी स्थूलतम हरि एवं विष्णु कहते हैं। यमाहुराद्यम विबुधा जगतपतिम सर्वसिद्धातारम अजम जनित्रम अणुरणीय समति प्रमाणम स्थूलातिष्ठविष्ठम हरिमेव विष्णु। लोक का संहार प्राप्त होने पर यह सारा विश्व जन्म स्थित होता है और सृष्टि के प्रारंभ में जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है वही ये भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हैं। जिन जनार्दन की इच्छा से ये सारा जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हुआ है और हो रहा है, वे शिव स्वरूप पुरुषोत्तम विष्णु वे यादवेश और श्री कृष्ण ही हैं जो यहाँ मेरे पास आए हैं। जो भृगुकुल में उत्पन्न होकर जामदग्नि के नाम से विख्यात हुए और मृग व्याध नामक रुद्र देवता का शिष्यत्व ग्रहण करके स्थित हैं, महादेव जी के शिष्य जिन परशुराम जी ने महासमर में कुठार नामक शस्त्र द्वारा बलवान कृत वीर कुमार सहस्त्रबाहु अर्जुन को जो हाथी घोड़े रथों के सेनाएं साथ लेकर चढ़ आया था बलपूर्वक मार डाला। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में आकर जिन्होंने पितरों का श्राद्ध किया और 21 बार इस जगत को क्षत्रियों से सूना कर दिया वही ये भगवान श्री कृष्ण है। तब जनार्दन देव रकुल में उत्पन्न हो राम नाम से विख्यात हुए। सीता नाम वाली लक्ष्मी देवी के साथ इनका संबंध स्थापित हुआ। इनके छोटे भाई लक्ष्मण सदा इनके अनुगामी बने रहे। ये बड़े पुण्यात्मा और विद्वान थे। इन राम रूप धारी जनार्दन ने समुद्र में सेतु बांधकर अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा राक्षस राज रावण का वध किया और विभीषण को राज्य देकर 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। रघोरथ है कुले जातो रामो नाम जनार्दन सीतिया च श्रिया युक्तो लक्ष्मणानुचरा कृतिम कृत्वा च सेतुम जलधो जनार्दनो हत्वा च रक्षा प्रतिमासु गैसर दत्वा च राज्यम सभी विभीषणाय तथा अश्वमेध रजियच्छयोसौ। कौन कह रहा है? पिशाच कह रहा है भगवान को कि ये वही है। तो अनेक अवतारों की चर्चा करके कहता है कि ये वही मेरे पास आ गए हैं। तब ये श्री हरि वसुदेव कुल में उत्पन्न हो वासुदेव नाम से विख्यात हुए और गोकुल में भांति भांति की लीलाएं करने लगे। उस समय उनके बड़े भाई बलराम उनके सहायक थे। जब ये शिशु रूप धारण करके खाट पर उतान सोए थे। खाट पर कैसे सोए थे? उतान सोए थे। उस समय उन जनार्दन ने पूतना के देह स्तन को पीकर उस दानवी को तत्काल प्राणहीन कर दिया। फिर वे श्री हरि वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उन सुदृढ़ जब कुछ बड़े हुए तब दूध पीते हुए छिपकर दही और माखन के लौंदे खा जाते थे। तब एक दिन रोष में भरी हुई मैया यशोदा ने उन भगवान विष्णु की कमर में दृढ़ता पूर्वक रस्सी बांध दी। उस सुदृढ़ बंधन से बंधे हुए उन दामोदर ने जुड़वे अर्जुन नामक वृक्षों को तोड़ डाला। गोकुलवास में रहते हुए बाल रूप धारी श्री हरि गोपियों के साथ खेलते हुए कभी उनका स्तन पीते कभी मुख का आस्वादन कर लेते थे। वृंदावन में गोकुलवासी गोपियों के साथ रहते हुए श्री हरि वहां अश्वरूपधारी केसी का वध करके सूर्य के समान शोभा पाने लगे। जो जगदीश्वर जनार्दन गोप बालकों से सेवित हो नाग के फनों पर क्रीड़ा करते थे और जिन्होंने अपने अतिशय पराक्रम का परिचय देते हुए यमुना के महान हृदय में नागराज कालिया को रौंद डाला था। जिन्होंने तालवन में ताल फलों के साथ ही भयंकर दानव धेनु का सर का उच्छेद कर डाला। उसका वध करके गोपों को आश्चर्य में डाल दिया। जिन परम बुद्धिमान श्री हरि ने समर्थक मेघों के घेर जाने पर अपने उग्र पुरुषार्थ से गोवर्धन पर्वत को हाथ उठा लिया और इंद्र के बल की निंदा करते हुए गोपों गोपियों और गोकुल को आनंद मग्न कर दिया। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले जो परमेश्वर श्री हरि गोपियों के वक्षस्थल पर उनके अधरामृत का पान करते हुए इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे। जो केशव रात्रि के समय वृंदावन के एकांत प्रदेश में गोपियों के साथ उनके मुखार बिंद का आस्वादन करते हुए सुखपूर्वक सोते थे और कामी पुरुष के समान कांता के अधर पल्लव रस का पान करते हुए उन गोपांगनाओं के वक्षस्थल पर ही शयन करते थे। कंस के बुलाने पर अक्रूर जी के साथ जाते हुए जिनसे हरि का यमुना जी के जल में प्रकट हुए नागलोक में पूजन किया गया और अक्रूर ने ये बात प्रत्यक्ष देखी यही भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। इस तरह से वो जो है मतलब काफी वर्णन कर रहा है लीलाओं का। तो समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो फिर हुआ क्या अंत में? बोला निश्चय ही पहले अन्य जन्मों में मेरे द्वारा धर्म का संचय भी हुआ जिसके फल का उदय हुआ जिससे मुझे इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वथा पुण्यात्मा हूँ। मेरे संसार बंधन का नाश हो गया। मैंने कौन सी वस्तु उपहार के रूप में दूं? इस समय इनसे क्या कहूँ? विष्णु मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपकी जैसी इच्छा हो मुझे आज प्रकट कीजिए। ऐसा कहकर वो पिशाच बारम्बार जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने विकट अट्टहास किया और वो फिर नृत्य करने लगा। वहां भगवान श्री कृष्ण के सामने ही वो यादवेश्वर केशव कृष्ण हरे आपको नमस्कार है नमस्कार है ऐसा कहकर नाना प्रकार से नृत्य करने लगा। नमो नमो हरे कृष्ण यादवेश्वर केशव प्रत्यक्षम च हरे स्तत्र ननर्थ विविधम नप। पुनः विकट अट्टहास और यथाशक्ति नृत्य करके वो पिशाच तुरंत ही एक मारे गए ब्राह्मण का शव लेकर आया भगवान को भोग लगाने के लिए। मारे केशों से युक्त उस महारघोर मांस के टुकड़े दो टुकड़े करके एक टुकड़े को लेकर यत्न पूर्वक जल से धोया, उसे सुंदर पात्र में रखकर देवेश्वर जनार्दन को नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रणत भाव से खड़ा हो गया। इस प्रकार बोला, जगन्नाथ प्रभु, ये भोजन आपके योग्य है, इसे ग्रहण कीजिए। जगदीश्वर हरे, आप जैसे प्रभुओं को भक्त की ये भेंट संपूर्ण हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। विष्णु, हम भक्ति भाव से आपके प्रति विनम्र हैं, इस विषय में आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हरे, भक्ति भाव से विनीत होकर सेवक ने जो वस्तु अर्पित की है उसे स्वामी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये तुरंत का मारा हुआ संस्कार संपन्न पवित्र खाने योग्य ब्राह्मण का उत्तम शव है। शास्त्र में हम पिशाचों के लिए इसके भोजन का विधान है। अतः भगवान, यदि कोई दोष ना हो तो आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुनः विकट अट्टहास करके उसने इच्छानुसार वो शव का ना छूने योग्य टुकड़ा उस समय भगवान को देने की इच्छा की। इसमें से भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, मन ही मन भगवान बोले, अहो, इसके मन में मेरे प्रति सर्वत्र स्नेह और करुणा है। मन में ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, कच्चा मांस खाने वाले पिशाच सर्वत्र इस मांस का ही उपयोग समर्पण व्यर्थ है। जैसे तुम ब्राह्मण का उत्तम शव बता रहे हो, ये मुझ जैसे लोगों के लिए छूने योग्य भी नहीं है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले जीवों के लिए ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। घोर कर्म करने वाले पिशाच ही ब्राह्मण की हिंसा का प्रयत्न करते हैं। ब्राह्मण की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नरक में ले जाने वाली है। अतः ये सब हमारे लिए सर्वथा न छूने योग्य है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाले पिशाच, तुम्हारा भला हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इससे मन निर्मल हो जाता है। तुमने मना शुद्धि के लिए प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे नामों का निरंतर कीर्तन करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसलिए मैं मन से तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु हरि ने उस समय अपने कोमल हाथ से उस पिशाच के सारे शरीर का स्पर्श किया। ऐसा करके वो नारायण देव ने उसे पाप से मुक्त कर दिया। उनके स्पर्श करते ही उस पिशाच का रूप कामदेव के समान कांतिमान हो गया। उसके सिर पर लंबे लंबे घुंघराले केश शोभा देने लगे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र सुंदर हो गई, अंगुलियां समान और सुंदर हो गईं, नाखून भी समान रूप से सुंदर दिखाई देने लगे। उसके समान और सुटौल मुख में केवल नासिका ऊंची थी, आंखें प्रफुल्ल कमल के समान दिखाई देती थीं, अंग कांति नील कमल के समान श्याम थी, कमल के स्वरूपी आभूषणों से विभूषित था। उसके भुजाओं में केयूर और अंगद नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। शरीर पर रेशमी पीतांबर सुशोभित था। वो ज्ञानवान सत्व संपन्न होकर साक्षात दूसरे इंद्र के समान शोभा पाता था। वो गंधर्व के समान गायक और साक्षात सिद्ध के समान सिद्धियों से संपन्न हो गया। उस समय साक्षात भगवान विष्णु के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर उस पिशाच का रूप जैसा अलौकिक हो गया। वैसा किसी का नहीं था। आज भी मुनियों का भी शरीर वैसा नहीं प्राप्त हुआ। उस पिशाच ने बारंबार घोर एवं परम दारुण तप करके उस समय जो दिव्य रूप प्राप्त किया अद्भुत था। जगदीश्वर भगवान जनार्दन का आश्रय लेकर कौन मनुष्य कष्ट पा सकता है, उसका सर्वत्र कल्याण होता है। जो प्रतिदिन उन भगवान विष्णु का ध्यान स्तोत्र पाठ अथवा मंत्र जप करता है, उसे कौन सी वस्तु सुलभ नहीं है। तब दूसरे कामदेव के समान खड़े हुए घंटा कर्ण से भगवान ने इस प्रकार कहा, जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्ग लोक में तुम्हारा अक्षय निवास बना रहेगा, तब तक तुम मेरे शासन से स्वर्ग में रहो, अन्यत्र नहीं। इस इंद्र के बदल जाने पर तुम स्वर्ग से ऊपर उठकर मेरे धाम में आओगे। ये जो तुम्हारा भाई है, ये भी जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके अनुसार कोई वरदान मांगो, मैं सर्वत्र सब कुछ दे सकता हूँ। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। घंटाकर्ण बोला, देव जनार्दन, जो अपने मन को संयम में रखकर, अब सुनिए क्या वरदान मांगा, ये सुनने लायक है। जिन्होंने सुना है वो सुने। क्या वरदान मांगा? देव जनार्दन, जो अपने मन को संयम में रखकर हम दोनों के इस समागम के प्रसंग का स्मरण करे, उसकी आपके प्रति अविचल भक्ति हो जाए। यश्चेमं संगमं देव संस्मरेन्नियतात्मवान् भक्तिस्तस्याचला देव त्वयि भुजान् जनार्दन। हरे, उसके मन की शुद्धि हो जाए, उसमें मलिनता न रह जाए, उस पुरुष के मन का सारा कलुष मिट जाए, ये मेरा वर है। मनाशुद्धिर भवेत् तस्य मा भूत कलुषता हरे कालुष्यम मनसस्तस्य मा भूदेशय वरो मम। ये सुनकर देवेश्वर केशव ने कहा ऐसा ही होगा, अब तुम स्वर्ग को जाओ, इंद्र की अतिथि बनो, इंद्रदेव तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं, तुम्हारा स्वागत करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण उस समय मरे हुए ब्राह्मण को जला दिया, जिंदा कर दिया। जिस ब्राह्मण को मार के लाया था कि भोग लगाओ, भगवान इस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। उस ब्राह्मण ने उनकी स्तुति करी, फिर वे जगदीश और गोविंद उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करके उसे विदा देकर उस स्थान से वहां लौट गए जहां सिद्ध मुनिगण अग्निहोत्र में लगे हुए थे। वो स्वर्ग लोक अधिकारी घंटाकर्ण भगवान श्री कृष्ण का की आज्ञा से स्वर्ग लोक को चला गया। अतः राजन, यदि तुम अपने मन की शुद्धि चाहते हो तो सदा इस प्रसंग का पाठ करो। ये जो है वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं कथा। वैशंपायन मुनि जो व्यासदेव के शिष्य हैं, राजा जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, उनको सुना रहे हैं। क्या कहने, अतः राजन यदि तुम अपने मन की शुद्धि चाहते हो तो सदा इस प्रसंग का पाठ करो, इसका पाठ करने से तुम्हारा मन निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। तस्मात् पठय सदा राजन मनाशुद्धिम यदीक्षसि मनसा शुद्धम भवति पठतस्ते जगतपते। श्री हरिनाम श्री विश्व हरिनाम महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधिका रमण भगवान की श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। हरे कृष्ण। अब प्रश्नोत्तर का समय नहीं है, क्षमा करना है।